नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ें और यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय उसके 7 और 8 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिनमें लोग फिर न कहेंगे, यहोवा जो हम इसराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, परंतु वे यह कहेंगे, यहोवा जो इसराइल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें जबरन निकाल दिया छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। परमेश्वर के वचन की असाधारण भविष्यवाणियों में यह एक है। आज उनका सबसे पुराना धार्मिक अवकाश है, चाहे यहूदी रूढ़िवादी हो या आधुनिक, उसे फसह सदैव ही स्मरण रहता है, क्योंकि वह मिस्र देश से उनकी चमत्कारी मुक्ति का उत्सव है। परमेश्वर यहाँ कहता है कि जब वह उन्हें भविष्य में स्वदेश लौटाएगा, तब वे मिस्र की चमत्कारी मुक्ति अर्थात छुटकारा को भूल जाएंगे। वह चमत्कार ऐसा महान होगा। अतः स्पष्ट है कि परमेश्वर का व्यवहार इसराइल के साथ समाप्त नहीं हुआ है। यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय उसके 16 और 17 पद में आगे लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यों कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है, तुम्हारा कल्याण हो, और जितने लोग अपने हट ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं, तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। मेरे प्रियो, झूठे भविष्यद्वक्ता शांति की भविष्यवाणी करते नहीं थक रहे हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर इसका खंडन करता है। आज भी अनेक स्वप्नदर्शी विश्व शांति की चर्चा करते हैं। परमेश्वर कहता है कि वे ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा कहा था, यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय उसके 22 पद में, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। समस्या यह नहीं कि मनुष्य शांति नहीं चाहता है, समस्या उसके मन के साथ है जो महादुष्ट है। हम देख नहीं पाते कि हम कितने बुरे हैं। आज सत्ताधारी दुष्ट कैसे शांति ला पाएंगे? यदि ऐसा हुआ तो यह परमेश्वर के वचन के विरोध में होगा। मेरे मित्रों, अब परमेश्वर धर्म गुरुओं से कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय उसके 21 पद में, ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। वह तो पहले भी कह चुका है कि आप राजनेताओं पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वे शांति स्थापित नहीं कर पाएंगे। वे गरीबों पर ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर कहता है कि वह देश में छाए हुए भविष्यद्वक्ताओं का भेजने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है कि उसका संदेश उसकी ओर से नहीं है। परमेश्वर ने उनके प्रशासनिक एवं धार्मिक शासकों दोनों को ही तुच्छ कहा है। आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर संसार से यही कहेगा, आज कौन है जो परमेश्वर की खोज करता है? संसार के धार्मिक अगुवे धर्म रहित हैं। वे सिर से पांव तक धर्म से ढके हुए हैं। वे अति धर्मी हैं, परंतु उनमें से कितने सच्चे एवं जीवित परमेश्वर की खोज करते हैं? यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। आज के मुक्त विचारक कहते हैं कि यह वास्तव में परमेश्वर का वचन है, और इस प्रकार वे मनुष्यों के मन से वचन चुरा लेते हैं। यदि मैं ऐसा अधर्मी शिक्षक या प्रचारक होता तो हाथ बांध कर खड़ा हो जाता। परमेश्वर कहता है कि वह इसके लिए कुछ अवश्य करेगा। परमेश्वर अधीर नहीं है। दुष्टों पर परमेश्वर का दंड विलंब कर रहा है तो धोखा न खाना। उनके दंड का दिन आने वाला है। मनुष्य की संतान के लिए मन में बुराई करने का स्वभाव है। वे सोचते हैं कि वे बच जाएंगे। परमेश्वर कहता है, मेरे सामने तो अनंत काल है और मैं ही नियंत्रण में हूं। धर्म के अगुओं के दंड का दिन भी अवश्य आएगा। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 23 समाप्त होता है और हम अध्याय 24 में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 24 एक प्रकार से प्रशिष्ट है। कोन्याह के बंधुआई में जाने के बाद का दर्शन, जो सिदकिय्याह के राज्यकाल का आरंभिक समय है। यर्मिया ने दर्शन में अंजीर की दो टोकरियां देखी। अंजीर का पेड़ यहूदा का प्रतीक है। एक टोकरी में अच्छे अंजीर थे और दूसरी में सड़े हुए। इसका अर्थ है कि यहूदा में दो प्रकार के लोग थे। आइए हम पढ़ेंगे यर्मिया की पुस्तक 24 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है उस पर बसे रहने पाओगे, परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया है और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो और ना अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि ना करूंगा। मेरे मित्रों ध्यान दें, परमेश्वर कहता है कि उसने उन्हें बंधुआई में भेजकर प्रसन्न है। वह वहां भी उनकी रक्षा करने और उन्हें बचे हुओं को लौटा लाने की प्रतिज्ञा करता है। यह लौटा लाने की प्रतिज्ञा एज्रा और नहमिया की अगुवाई में स्वदेश आने के संदर्भ में नहीं है। उन्हें उखाड़ न डालूंगा से यहां पर स्पष्ट है कि यह उस समय की प्रतिज्ञा नहीं है, क्योंकि उसके बाद वे फिर से उखाड़े गए थे। अतः यह प्रभु राज के समय की प्रतिज्ञा है। पद 7 में लिखा है कि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। निकम्मे अंजीर सिदकिय्याह और बचे हुए यहूदी थे जो परमेश्वर के वचन के विरोध मिस्र में चले गए थे। तब हम आगे पढ़ते हैं यर्मिया की पुस्तक 24 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, इस कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे और जितने स्थानों में मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा उन सबों में वे नामधराई और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे। मेरे मित्रों, यहां पर लौकिक इतिहास यर्मिया की भविष्यवाणी की पूर्ति को स्पष्ट करता है और यहां पर हम देखते हैं कि यह बिल्कुल स्पष्ट प्रकट है। यहां पर अध्याय 24 भी समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 25 में देखेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर 70 वर्ष की बंधुआई की घोषणा करता है। स्मरण रखें कि यर्मिया की पुस्तक काल क्रम में व्यवस्थित नहीं है, अतः यह भविष्यवाणी पिछले अध्याय की भविष्यवाणी से 17 और 18 वर्ष पूर्व की है। योशियाह का पुत्र यहोयाकीम गद्दी पर बैठा है। वह अपने ईश्वर भक्त पिता के विपरीत था। दूसरे राजा की पुस्तक 24 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, उसने यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया जिसको यहोवा ने क्षमा करना ना चाहा। आगे हम देखते हैं यर्मिया यह दोष लगाता है। यर्मिया की पुस्तक 25 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है, क्योंकि वे परमेश्वर की वाणी सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए बेबीलोन उन पर आक्रमण करेगा। यर्मिया की पुस्तक 25 अध्याय के 9 पद में लिखा है, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास के सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है। ध्यान दीजिए, अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा। परमेश्वर नबूकदनेस्सर को अपना दास कहता है। वह परमेश्वर के दंड का साधन था। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसराइल दूध और शहद की नदियों का स्थान है, और ऐसा क्यों नहीं है? आज वहां पर पानी का घोर संकट है। परमेश्वर ने कहा कि वह उसे सदा का निर्जन स्थान बनाएगा और संसार पर प्रकट करेगा कि उसने प्रजा को ही नहीं देश को भी दंड दिया है। उस भूमि पर परमेश्वर का दंड है जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर पाप का श्राप है, जिसके कारण पृथ्वी अपनी क्षमता के अनुसार उपज प्रदान नहीं कर पाती है। यर्मिया की पुस्तक 25 अध्याय के 10 पद में लिखा है, मैं ऐसा करूंगा कि इनमें न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दुल्हे या दुल्हिन का और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और न इनमें दिया जलेगा। परमेश्वर उनके संपूर्ण आनंद को छीन लेगा। विवाह उत्सव समाप्त हो जाएंगे, न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, अर्थात व्यापार और लेन देन समाप्त हो जाएगा। यह सब नहीं होगा और न दिया जलेगा। उनके घरों में संध्या की भी प्रसन्नता नहीं होगी। यर्मिया की पुस्तक 25 अध्याय के 11 पद में लिखा है, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। इसराइल के साथ व्यवहार करते समय कैलेंडर काम में लेता है। वह उनके इतिहास के संबंध में समय का लेखा रखता है। कलीसिया के साथ व्यवहार करने में परमेश्वर समय का लेखा नहीं रखता है, और यही कारण है कि हम प्रभु के आगमन का समय नहीं जानते हैं। हमें तो यह कहने का अधिकार भी नहीं है कि वह शीघ्र आने वाला है। हमें उसके आने का समय नहीं बताया गया है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि 70 वर्ष का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने पर परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि प्रत्येक 7वां वर्ष विश्राम वर्ष होगा, जिसमें उन्हें खेती नहीं करना है। वह भूमि के विश्राम का वर्ष होगा। इसे हम लय व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा पालन की आशीष ही नहीं की, अतः अवज्ञा के दंड की भी प्रतिज्ञा की थी। यदि वे उसके विपरीत चाल चलेंगे तो वह भी विपरीत चाल चलेगा। ध्यान दें कि परमेश्वर को उनकी अवज्ञा का पूर्व ज्ञान था। लय व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय उसके 34 और 35 पद में लिखा है, तब जितने दिन वह देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे, उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, तब ही वह देश विश्राम पाएगा, अर्थात अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा। जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा उतने दिन उसको विश्राम रहेगा, अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहां बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में ना मिला होगा, वह उसको तब मिलेगा। लगभग 490 वर्ष तक विश्राम वर्ष का पालन नहीं किया गया था, अर्थात 70 वर्ष विश्राम अनदेखे किए गए थे। परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा कहता है कि वे 70 वर्ष परदेश में रहेंगे कि उनकी भूमि को विश्राम मिले, और जब विश्राम वर्षों की क्षतिपूर्ति हो जाएगी तब वे लौट आएंगे। सुनिए कि यिर्मयाह क्या कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक 25 अध्याय के 12 पद में, जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कस्तियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। यिर्मयाह के समय तो यह भविष्यवाणी थी, परंतु आज यह इतिहास है। परमेश्वर ने किया। इस विषय में विवाद की संभावना बिल्कुल नहीं है। यहूदा ने परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार नहीं किया है। वे मंदिर तो जाते थे परंतु मन में, अर्थात मन से परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। उनका जीवन आचरण परमेश्वर की योग्य ना था, अतः परमेश्वर ने कहा कि वह उनका सुख चैन विश्राम आनंद सब कुछ छीन लेगा। उनके घरों में संध्याकालीन दिया नहीं जलेगा और भूमि को 70 वर्ष विश्राम दिया जाएगा, क्योंकि 490 वर्ष तक उन्होंने विश्राम वर्ष का पालन नहीं किया था। हम देखते हैं कि कोप की मदिरा का कटोरा है जो उनके जीवन में है। यह भविष्यवाणी उस समय की है जब नबूकदनेस्सर पहली बार सब कुलीन वर्ग और सैनिकों तथा कलाकारों को बंधुआ बनाकर ले गया था। सिदकिया राजा और शेष प्रजा नबूकदनेस्सर को कर चुकाकर उसके अधीन थे। योशिय्याह के बाद जितने भी राजा सिंहासन पर बैठे सब दुष्ट थे। यिर्मयाह ने अंतिम दंड की घोषणा कर दी, नबूकदनेस्सर आकर सबको बंदी बना लेगा और यरूशलेम को ध्वंस कर देगा, बहुत कम लोग बचे रहेंगे। यह बंधुआई 70 वर्ष की होगी। यह भविष्यवाणी का अंत नहीं है। अब यिर्मयाह एक उपमा द्वारा संदेश सुनाता है, कोप की मदिरा का कटोरा। अनेक भविष्यद्वक्ताओं ने यह उपमा काम में ली है, उन्होंने मनुष्य के विद्रोह को पाप कहा है। यिर्मयाह की पुस्तक 25 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा है, इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाख मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा पिला दिया। मेरे प्रियो, अब वह विभिन्न राष्ट्रों की सूची देता है। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह 25 उसका 18 पद, अर्थात यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासियों को और उनके राजाओं और हाकिमों को पिलाया ताकि उनका देश उजाड़ हो जाए और लोग ताली बजाएं और उसकी उपमा देकर शाप दिया करें जैसा आजकल होता है। पहले यरूशलेम तदोपरांत यहूदा के अन्य नगर और राजा तथा हाकिमों के नाम दिए गए हैं। यद्यपि यह विशेष करके इसराइल के पापों के संबंध में है, परमेश्वर की अपनी प्रजा तक ही सीमित नहीं है, संसार की सब जातियां दोषी हैं। जिस प्रकार मदिरा का कटोरा भरता है उसी प्रकार परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा भी भर रहा है। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में भी हम पाप का कटोरा भर रहे हैं। इसराइल के बाद मिस्र देश का नाम भी आता है। यिर्मयाह की पुस्तक 25 अध्याय के 19 पद में लिखा है, और मिस्र के राजा फिरौन और उसके कर्मचारियों हाकिमों और सारी प्रजा को। अब वह ऊज देश और फलिस्तियों का क्षेत्र तथा अश्कोलोन और अज्जाह और एक्रोन, अश्दोद, एदोम, मोआब, अमोन, सोर, सीदोन, समुद्र पार के द्वीप जिसे हम पद 22 में पाते हैं आदि सबको परमेश्वर के कोप की मदिरा का कटोरा पीना पड़ेगा। मनुष्य का पाप और परमेश्वर से लगातार विद्रोह परमेश्वर के प्रकोप से भरने वाला मदिरा का कटोरा है। जब वह कटोरा भर जाएगा तब पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रकोप भड़केगा। यिर्मयाह की पुस्तक 25 अध्याय के 27 पद में हम पढ़ते हैं, तब तो उनसे यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इसराइल का परमेश्वर है यूं कहता है, पियो और मतवाले हो और उल्टी करो, गिर पड़ो और फिर कभी न उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। परमेश्वर उन्हें वह कटोरा अर्थात अपना दंड पिलाएगा। इसराइल के क्षेत्र में और उसके पार के सब देशों को परमेश्वर दंड देगा, क्योंकि वे सब परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं। इससे एक तथ्य प्रकट होता है कि विश्व का प्रत्येक देश परमेश्वर के समक्ष लेखा देगा। यिर्मयाह की पुस्तक 25 अध्याय उसके 30 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने वाले के समान ललकारेगा। परमेश्वर का दंड इसराइल तक ही सीमित नहीं रहेगा। बेबीलोन परमेश्वर के दंड का साधन था और इतिहास से स्पष्ट होता है कि बेबीलोन पहली विश्व शक्ति था जिसने उस युग के सभ्य देशों पर राज्य किया था। यर्मिया की पुस्तक 25 अध्याय के 32 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। यह नबूकदनेस्सर के महान विजय अभियान की गाथा है। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने उस युग के सब देशों को, यहाँ तक कि महाशक्तियों मिस्र, सोर और सीदोन को भी अपने अधीन कर लिया था। इस अध्याय के अंतिम पद देश देश और उनके चरवाहों अर्थात राजाओं पर परमेश्वर का प्रकोप के दिन का सजीव चित्रण प्रदान करते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 25 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 26 की ओर बढ़ते हैं, जिसका विषय है यहोयाकीम के राज्य में मंदिर के आंगन में संदेश और जुओं का दृष्टांत। आपको स्मरण होगा कि अध्याय 1 में यर्मिया को मंदिर के फाटक में खड़े होकर संदेश देने को कहा गया था। अब यहाँ उसे मंदिर के आंगन में खड़े होकर संदेश देने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए पढ़ें यर्मिया की पुस्तक 26 अध्याय उसका 2 पद। यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूं कह दे, उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। यह संदेश वह यहोयाकीम के राज्य काल में दे चुका था और अब सिदकिया के राज्य काल में भी वह दोहरा रहा है। अध्याय 26 से 30 में जो संदेश है वह यहूदा के बंदी बनाए जाने से पूर्व परमेश्वर के अंतिम वचन है। मेरे मित्रों, जहां तक मेरा अपना विचार है, यहूदा वासी अब भी मंदिर की नित्यचर्या पूरी कर रहे थे। उस समय धार्मिकता का प्रदर्शन तो यथाक्रम चल रहा था, अब देशों में समृद्धि भी थी, उनकी कोई शिकायत भी नहीं थी। अतः प्रतीत होता था कि परमेश्वर की ये भविष्यवाणी व्यर्थ के क्रोध का प्रदर्शन है, जबकि सच तो यह था कि मनुष्य परमेश्वर से बहुत बहुत दूर था और देश में भयंकर पाप व्याप्त था। अतः यर्मिया लगातार पुकार रहा था कि यह उचित नहीं है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उसका दास इस बात को लोगों तक पहुंचा रहा था। यर्मिया की पुस्तक 26 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, संभव है कि वे सुनकर अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। मैं उनकी हानि करने से पछताऊं। परमेश्वर के पछताने का अर्थ यह नहीं कि उसने अपना निर्णय बदल दिया हो। इसका अर्थ है कि मनुष्य ने अपना मन फिरा लिया है। यदि मनुष्य मन फिराए तो परमेश्वर दंड देने की अपेक्षा उन्हें आशीष देगा, और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने अपना विचार बदल दिया है, परंतु यह सच नहीं है। परमेश्वर पापी को दंड देगा और मन फिराकर उसके पास आ जाने वाले पापी को वह क्षमा कर देता है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। दंड के लिए नियत पापी जब मन फिराकर परमेश्वर की ओर फिरता है और आशीषें पाता है, उद्धार पाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने अपना विचार बदल दिया है। परंतु सच तो यह है कि पापी ने अपना मन बदला है। परमेश्वर कहता है कि यदि वे मन फिराएं तो परमेश्वर उन्हें नष्ट नहीं करेगा, उन्हें दंड नहीं देगा। यर्मिया की पुस्तक 26 अध्याय उसके 4 से 6 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरे व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है न चलो और न मेरे दास भविष्यद वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर शाप दिया करेंगे। मैं इस भवन के शीलो के समान उजाड़ दूंगा, वह पूरी तरह उजड़ जाएगा। इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। यरूशलेम संसार का बोझ रहा है और आज भी है। वह रूस और अमेरिका द्वारा नियंत्रित पृथ्वी पर शतरंज का एक मोहरा स्वरूप है। परमेश्वर ने कहा था कि वह उसे सब जातियों से शाप बनाएगा और उसने ऐसा ही किया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यर्मिया को मार डालने की भी धमकी है। यर्मिया की पुस्तक 26 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, जब यर्मिया सब को जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यद वक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। उन्होंने यर्मिया द्वारा लाए गए परमेश्वर के संदेश को तुच्छ जाना और अब वे उसकी हत्या करना चाहते हैं। अब यहाँ कुछ जटिलता उत्पन्न होती है क्योंकि इसमें मनुष्य के तीन वर्गों का उल्लेख है, हाकिम एवं याजक, भविष्यत वक्ता और लोग। यर्मिया की पुस्तक 26 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, तब याजकों और भविष्यद वक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। याजक और भविष्यद वक्ताओं का विचार एक ही था, वे यर्मिया को मार डालना चाहते थे और उन्होंने अपना विचार नहीं बदला, परंतु हाकिमों ने निर्णय लिया कि वे यर्मिया की बात सुनेंगे। जनता में जिन लोगों के विचार याचकों और भविष्यद वक्ताओं से मेल खाते थे वे हाकिमों के विरुद्ध खड़े हो गए। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसी के लोग उसके विरुद्ध हो गए, लेकिन परमेश्वर अपना वचन उन तक पहुंचाना चाहता था। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414 और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
गाएंगे हम यीशु के लिए सदा, हे हे, गाएंगे हम यीशु के लिए सदा, ले जाएगा यीशु मुझको है पना, ठंडे पानी की नदियां है जहां, चरवाहा यीशु है तो फिक्र क्या, ले जाएगा राजा राजा, रे पापा पापा, रे पापा पापा, रे पापा पापा, रे पापा पापा, रे पापा पापा। पानी की नदियां हैं।